गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी
पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमैया जगन्नाथ बलदेवा नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव गुरुदेव
श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम नौवा स्कंद चौथा अध्याय अंबरीश महाराज ऑफेंडेड बाय दुर्वासा मुनि इसका 64वां श्लोक है 9.4.64
नाहम आत्मानम आसासे नाहम आत्मानम आसासे मद्भक्तै मद्भक्तै साधुभिर्विना साधुभिर्विना मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं श्रियं च अत्यन्तिकीम् च अत्यन्तिकीम् ब्रह्मन् श्रियं च अत्यन्तिकीम् ब्रह्मन् येषां गतिर् अहं परा येषां गतिर् अहं परा नाहम आत्मनम आशासे नाहम आत्मनम आशासे मद्भक्तै साधुभिर्विना मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं च आत्यन्तिकीं ब्रह्म श्रियं च अत्यन्तिकीं ब्रह्म येषां गतिरहं परा नाहम् आत्मानम् आससे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं च अत्यन्तिकीं ब्रह्म येषां गतिर् अहं परा
दुर्भिर्विना श्रियं च अत्यन्तिके ब्रह्म
नाहम् आत्मनम् आसासे नाहम् आत्मनम् आसासे श्रियं च अत्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा नाहम् आत्मनम् आससे मद्भक्तैर्साधुभिर्विना श्रियं च अत्यन्तिकीं ब्रह्म येषां गतिरहं परा
माताजी
नाहम् आत्मनम् आसासे नाहम् आत्मनम् आसासे मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं च अत्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा नाहम् आत्मनम् आसासे मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं च अत्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा
न नहि अहम् मैं आत्मानं दिव्य आनंद आसासे चाहता हूं मद्भक्तै मेरे भक्तों के साथ साधु भी साधु पुरुषों के साथ विना उनके बिना श्रीयम् मेरे छह ऐश्वर्य च भी आत्यंतिकीं परम ब्राह्मण हे ब्राह्मण ये साम जिसका गति लक्ष्य अहम मैं परा परम या चरम अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा है। शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद जी अनुवाद बता रहे श्लोक का इस तरह भगवान बोल रहे हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। ये दुर्वासा मुनि को भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान आत्मनिर्भर है, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यद्यपि वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण है, किंतु वे अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्त ग्वालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान की अलादिनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी अनंत बनाना चाहते हैं। इस तरह वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए प्रेरित करते हैं कि उनकी शरण में आया जाए, क्योंकि अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी असीम या अनंत बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, निताई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त भगवान के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वह अप्रत्यक्षत भगवान का नियंत्रक बन जाता है। यद्यपि भगवान सड ऐश्वर्य से युक्त है, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता, तो वह अपने को सुखी अनुभव नहीं करता। इसीलिए अपने इस सुख की पूर्ति के लिए वह कभी कभी दत्तक पुत्र बनाता है। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञात है, अतएव वह भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में लगा रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा। मैं फिर से अपनी स्थिति दोहराना निश्चित चाहूंगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सच तो बात यह है कि व्यास आसन पर बैठने की मेरी कोई क्षमता लायकात दक्षता कुछ भी नहीं है, लेकिन वैष्णवों के आशीर्वाद से उनके आदेशों का पालन करते हुए कुछ छोटी सेवा जो करने का जीवन भर निर्णय लिया है, उस सेवा के उस वैष्णव के आशीर्वाद के बल पे मैं प्रयत्न करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि आज सारे उपस्थित वैष्णव वृंद मुझे आशीर्वाद दें, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं ये सेवा श्रील प्रभुपाद जी के विचार सिद्धांतों पे आधारित कर सकूं। और विशेष मेरे परम मित्र बनामाली प्रभु का मैं हमेशा आशीर्वाद चाहता हूं, और भी अन्य वैष्णव जन मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्कंद नौवा अध्याय चौथा, दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। हाँ, ये सतयुग के समय से भगवान और भक्तों का अपमान लोग करते आए हैं और ये चल रहा है आज भी। पिछले कुछ दिनों पहले की घटना घटित हुई, पोलैंड में एक चर्च है, वहां की एक साध्वी, हाँ जिसे नन कहते हैं वो लोग, चर्च की एक साध्वी जो है नन, वो पोलैंड की कोर्ट में इस्कॉन और इस्कॉन के भक्तों के विरुद्ध में केस दाखिल कर दिया। हाँ, बोले कि ये जो इस्कॉन के जो भक्त है ना, ये सभी लोग दंभी है, प्रपंची है, सब लंपट लोग है। वो लोग जो है वो किसका भजन करते हैं, एक लंपट व्यक्ति कृष्ण नाम है उसका, उसका भजन करते हैं, जिन्होंने 16,108 लड़कियों से विवाह किया है। हाँ, इनका लीडर ऐसा है तो सोचिए सब लोग कैसे रहेंगे। ऐसा नन ने केस दाखिल कर दिया कोर्ट में, बोले इसको बंद करवाओ, हमारे पोलैंड से इस्कॉन को बंद करवा दीजिए। तो केस का तारीख जिस दिन था उस दिन उसको बुलाया नन को, बोली आप समझाइए आपका केस क्या है, और इस्कॉन का एक भक्त भी गया था हाँ केस को लड़ने के लिए अपनी तरफ से क्या है करके। तो जज ने उसका नन का बात सुना कि बताइए आपका क्या कहना है, तो उसने ये सब वृत्तांत बताया ऐसे ऐसे, बोले लोग सबको बिगाड़ रहे हैं हाँ, इसीलिए हमको अपने देश में से इस्कॉन को बंद करवा देना चाहिए, भगवान का विरोध भक्तों का विरोध यही चलते आ रहा है। फिर अपने भक्त का समय आया, जय बजे कृष्ण से ही बड़ो चतुर। हाँ, उसको जज ने बोला कि अच्छा भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो बड़ी नम्रता से, नम्रता एक ऐसा गुण है ना कि ये अच्छे अच्छे लोगों को परास्त कर सकता है, जैसे अम्बरीश महाराज का नम्रता। हाँ, एक महान तपस्वी योगी दुर्वासा मुनि, हाँ जिसके जब वो आते हैं तो स्वयं द्वारकाधीश उनको वेलकम करने के लिए रुक्मिणी माता जी के साथ गए थे, ऐसे तपस्वी योगी को भी अम्बरीश महाराज ने अपनी नम्रता से ही परास्त किया था। तो उस भक्त ने बड़ी नम्रता से कहा कि जज साहेब, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप कृपया करके इस साध्वी नन को ये पूछिए कि जब इसने साध्वी नन बनने का दीक्षा लिया था चर्च में, तब इसने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी वहां पे। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में कोई दीक्षा लेता है तो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, और हरिनाम सेवा जितनी होती है करूंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा, ना ऐसे कुछ हम लोग नियम लेते हैं, ये हमारी प्रतिज्ञा है, गुरु के सामने ये वचन देते हैं। तो बोले इसने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी अपने गुरु के सामने। तो जज ने पूछा, साध्वी आप बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। तो वो शर्मा गई, वो बोल नहीं पा रही थी, चुप रह गई। क्यों? जज पूछे क्यों नहीं बोल पा रही हो? अच्छा ठीक है, आपको पता है तो आप बोल दीजिए कि इन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है। तो भक्त ने कहा कि इन्होंने प्रतिज्ञा उस समय लेते हुए कहा, हे जीसस क्राइस्ट, आज से मैं आपके साथ विवाहित हुई, मैं आपकी पत्नी हुई। तो फिर भक्त कहता है, अच्छा बताइए तो आज पोलैंड में और पूरे विश्व में कितनी साध्वी है। तो जज तो क्रिश्चियन ही था, वो बोले रहेंगी 2-3-4 करोड़ होगी। तो बोले तो फिर जीसस क्राइस्ट ने कितने मैरिज किए हैं? बोले 2-4 करोड़। अब आप मुझे बताइए जज साहेब, कि कृष्ण ने 16,108 विवाह किया ऐसा ये कहती है, और जीसस क्राइस्ट ने करोड़ों किया है। अच्छा, ये जिस व्यक्ति ने करोड़ों विवाह पहले से करके रखा है उसके साथ वापस विवाह करने जा रही है, तो किसका चरित्र कम हुआ बताइए, इसका कि कृष्ण का? जज ने कहा बात सही है, केस को यहां पे ही खत्म करो। हाँ, केस आगे नहीं चल सकता है। केस खत्म हो गया, बंद हो गया, इस्कॉन चालू है पोलैंड में, और कोई ये नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भक्त का और भगवान का विरोध जो है ये सतयुग से देखते आ रहे हैं। आज की कथा में हम लोग जान रहे हैं अम्बरीश महाराज जो एक महान भक्त है द्वारकाधीश के, जिनके द्वारकाधीश विग्रह जो आज भी पृथ्वी पे है मौजूद। किसी को पता है अम्बरीश महाराज के स्वयं के जो द्वारकाधीश विग्रह जिसकी पूजा वो स्वयं करते थे आज कहां पे है पृथ्वी पे? डज एनीवन नो? राजस्थान का कोई नहीं है यहां पे? कांकरोली, कांकरोली में जो राजस्थान में जो द्वारकाधीश का मंदिर है ना, वो छोटे द्वारकाधीश विग्रह जो है ना, वो उस समय के हैं, सतयुग के समय से जो अम्बरीश महाराज स्वयं जिसका पूजा सेवा करते थे वो है आज भी। कांकरोली के चार धाम यानी राजस्थान के चार धाम यात्रा में एक ये धाम है। ये एक महान भक्त थे। हम सब लोग जानते हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, लेकिन नम्रता बेजोड़ थी। हाँ, ऐसे नम्र राजा मिलना अति दुर्लभ होता है, केवल शास्त्रों में ही हमें तो दिखते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसा ढूंढना भी नहीं मिलेगा, कोई मिलने वाला नहीं है। और दुर्वासा मुनि एक महान तपस्वी है। हाँ, योग तपस्या करने में उनके जैसा व्यक्ति कोई नहीं है संसार में, न कोई था न कोई होने वाला है। हाँ, स्वयं भगवान भी द्वारकाधीश जी जब वो आए द्वारका और उन्होंने संदेश भेजा कि मैं आया हूं, स्वयं भगवान रुक्मिणी माता जी के साथ दौड़ते आए हुए थे, बोलो चलिए हमारे यहां। और तब उन्होंने भगवान को कहा कि आपको मेरा रथ खुद खींचना पड़ेगा तो ही मैं आऊंगा। तो भगवान रथ भी खींचे रुक्मिणी माता जी के साथ, इतना बड़े तपस्वी थे वो। हालांकि भक्त नहीं थे, तपस्या का बल था। और भगवान द्वारकाधीश उस समय केवल ये सिखाना चाहते हैं कि भक्त हो चाहे तपस्वी योगी, अगर हमारे घर कोई आता है तो उसका आगता स्वागता वैदिक धर्म के अनुसार करना, यह हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहे थे द्वारकाधीश जी। आए अम्बरीश महाराज ने एक साल का एकादशी का व्रत किया था। अच्छा, एक साल का एकादशी व्रत का क्या अर्थ होता है? कुछ लोग का कहना है कि हर एकादशी किया, यानी 52 एकादशी जो साल में आती है उसको किया। नहीं, ऐसा नहीं है, एक साल तक सतत निर्जल उपवास किया। हाँ, हर रोज का। हाँ, एक साल एकादशी व्रत का अर्थ होता है, एकादशी व्रत वास्तव में शास्त्रों के अनुसार केवल निर्जल ही है। हाँ, ये हम कलयुग के जले वालों लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन वास्तविक इसके लिए एकादशी व्रत मीन्स निर्जल। इसीलिए शास्त्र भागवतम ऐसे लिख रहा है कि एक साल तक एकादशी व्रत किया, यानी सतत 365 दिन निर्जल व्रत किया था। हेतु क्या था? सम्राट तो थे ही, कोई बड़ा कुछ धन तो चाहिए नहीं उनको। हेतु था जन कल्याण। और कैसा जन कल्याण? हेतु था कि प्रजा जो है वो कृष्ण भक्त बने, बस यही हेतु। एक साल तक निर्जल व्रत किया, और किसके आदेश से किया? साधु समाज और गुरुओं के आदेश से। हाँ, अपने मनोकल्पित धर्म नहीं, मनोगतान नहीं कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैं ये करूं तो सबका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। साधुओं को पूछा, साधुओं ने बताया इस तरह से कीजिए, उनके आदेश के अनुसार किया। द्वारकाधीश का विग्रह भी रखा था यमुना किनारे, पूजा सेवा भी चल रही थी, ये चल रहा था। एक साल पूरा हुआ, दुर्वासा मुनि आके खड़े हो गए। दुर्वासा मुनि फिर स्नान करने जाते हैं, वहां तप योग में बैठे, समय परन का बीत रहा था, आप सब जानते हैं। पूछा जब साधुओं को कि अब क्या करूं, तब साधुओं ने आदेश दिया कि नहीं, आप एक काम कीजिए, परन निर्जल एकादशी था इसके लिए परन जल से भी हो सकेगा। हम लोगों का परन जल से नहीं हो सकता है अगर हम लोग निर्जल एकादशी नहीं रखते हैं तो। हाँ, अगर हम लोग जो साबुदाना या सामा वगैरह खाते हैं तो हम लोग का परन अन्न से ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम लोग जल से कर सकते हैं। निर्जल वाले का परन जल से हो सकता है, तो उन्होंने जल थोड़ा सा ले लिया। दुर्वासा मुनि को तप में ही पता चल गया, पता नहीं कौन सा तप था कि तप में पता चल रहा है कि क्या कर लिया उसने। तप कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, एक प्रश्न होना चाहिए एक्चुअली हमारे मन में कि तप में ऐसा कैसा पता चला कि उसने जल पी लिया। लेकिन यहां पे बताया कि तप से पता चल गया, तप में ही पता चल गया कि उन्होंने जल पिया। क्रोधित हो गए, उधर गए भी नहीं, अपना एक बाल निकाला फेंका और एक कृत्या खड़ी कर दी, एक भयानक राक्षसी कृत्या खड़ी की, बोले जाओ अंबरीश को मारो। अकृत्या जो तांत्रिक शक्ति से उत्पन्न हुई थी उसको तो वही चाहिए हाँ कि चलो किसी को मारना काटना खाना वो ही उसको चाहिए। और यहाँ पे आदेश मिला हाँ पैदा करने वाले गुरु से कि जाओ। निकली सीधी कृत्या जो था वो भयानक राक्षस गया अंबरीश महाराज को मारने के लिए। अभी अंबरीश महाराज बड़े नम्र थे, वो चाहे तो क्षत्रिय राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, कई कितनी सैनिक सेना के साथ थे हाँ, चाहे तो विरोध कर सकते थे लेकिन विरोध नहीं। बोले नहीं, एक साधु ने भेजा है ना, प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। हाथ जोड़े नम्रता से खड़े हो गए, ठीक है जो होना सो होने दो। ये महाराज तो खड़े हो गए लेकिन इनके पिता श्री द्वारकाधीश को अच्छा नहीं लगा। बोले मैं कैसे अपने पुत्र को ऐसे मरने दूं हाँ, इसका कोई कसूर तो है नहीं इसमें हाँ। तो द्वारकाधीश ने सुदर्शन छोड़ दिया, बोले जाओ रक्षा करो। और सुदर्शन तो उसको तो सेवा ही चाहिए किसी भक्त की रक्षा की, वो हमेशा तत्पर रहता है कि कब मैं जाके किसी भक्त की सेवा करूं हाँ। भगवान का आदेश मिले, जैसे ही आदेश मिला सुदर्शन निकला, दाड़ 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 दाड़, उसका इतना तेज है, उतना अग्नि है, उतना अग्नि है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हाँ। गोवर्धन जब भगवान ने उठाया था तो चारों बाजू से जो पानी, ऊपर से तो चलो गोवर्धन था अंदर नहीं आएगा लेकिन नीचे से तो आ सकता था ना पानी, उस पानी को रोकने के लिए भगवान ने कल सुदर्शन छोड़ा था। वो सुदर्शन जो तेज गति से घूम रहा था उसकी अग्नि मात्र से पानी ऊपर से गिरने के पहले ही सूख जाता था, यानी नीचे ही जमीन पे पानी नहीं आ रहा था, इतना तेज अग्नि था। तो वो तेज अग्नि से सीधा दुर्वासा मुनि के पीछे, और इतना बड़ा तपस्वी हाँ तेज अग्नि सहन नहीं कर सका, भागा। भागा तो कहां भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ब्रह्मा जी के पास गया। अरे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी को पहले आश्चर्य लगा, अरे दुर्वासा मुनि कह रहे मेरी रक्षा करो, ये क्या बात है। अरे दुर्वासा मुनि आप रक्षा, ठीक है चलो मैं आपकी रक्षा करता हूं, कोई मुसीबत आई तो बताइए मैं आपकी रक्षा करूंगा। अरे उस वो देखिए पीछे सुदर्शन आ रहा है, उससे मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने देखा, अरे सुदर्शन ने नहीं, प्लीज प्लीज क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा, आप कृपया कहीं और चाहिए क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। तो दुर्वासा मुनि और भागे, सुदर्शन उसके पीछे भाग रहा है। भागते 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 वो शिवजी के पास गए। शिवजी बोले, अरे दुर्वासा मुनि आप तो मेरे पुत्र के समान ही, बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं। बोले मेरी रक्षा करो। बोले निश्चय, बोलो क्या है। बोले वो सुदर्शन पीछे है। शिवजी ने भी पीछे मुड़ के देखा, सुदर्शन ने, नहीं दुर्वासा मुनि मेरे से ये नहीं हो सकेगा, क्षमा कीजिए, सुदर्शन से मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो बोले कौन बचा पाएगा, जब ब्रह्मा ने मना किया आप मना कर दिया, अब कौन बचाएगा। बोले नारायण लोग जाइए। भागे वहां से, देखिए कितना तपोबल था कि उसी शरीर में, सक्षम शरीर में जा रहे हैं नारायण लोग। वैकुंठ में जाके नारायण जी को प्रार्थना करते हैं कि आपका ही अस्त्र है सुदर्शन, तो आपका अस्त्र है, आप तो निश्चय ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान कहते हैं, भूल गए मैंने पहले एक बार क्या बताया था तुमको। बोले क्या बताया था, क्या बताया था कि पहले भी तुम एक बार ये गलती कर चुके हो, जब तुम बलि महाराज के पास गए थे और तुमने बताया था कि वामन देव मेरे साथ चलो मेरे कार्य में सहयोग देने, तब भी मैंने तुमको बताया था कि मैं तो यहां पे भक्तों पे आधारित जीवन जीता हूं, भक्तों से बंधा हुआ हूं, अगर मुझे कहीं पे ले जाना है मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तुम बलि महाराज से पूछो, अगर वो बोलेंगे कि हाँ वामन जाओ तो मैं चल दूंगा, अगर वो बोलेंगे नहीं सुतल लोग तुम्हें नहीं छोड़ना है तो मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो सेवक हूं, मैं मेरे भक्तों का दास हूं, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूं, मैं उनसे बंधा हुआ हूं, मेरा बंधन जो है वो काट कोई सकता है तो केवल भक्त काटेंगे, आपसे मेरा नहीं हो सकता है कुछ। और जब मेरा ये विचार है तो मेरा जो सेवक है सुदर्शन वो कैसे वो पीछे है, मैं अगर कहूंगा आ जाओ तो अभी वो मानने वाला भी नहीं है मेरा, वो बोलेगा मैं आपका नहीं, आपका बॉस कौन है उसको मैं पूछूंगा। बोले मेरा बॉस इस समय अंबरीश है, अंबरीश को पूछना पड़ेगा। तब उनको दुर्वासा मुनि को समझ में आया कि कुछ गलती निश्चय हो गई है। दुर्वासा मुनि वापस आ रहे हैं अंबरीश महाराज के पास। तो वो जो वार्तालाप हुआ ना कि मैं भक्त के पराधीन हूं, वो कल का श्लोक था जो विश्वरूप प्रभु जी ने लिया था, और आज का श्लोक जो दूसरा श्लोक भगवान आगे बता रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैं भक्तों के पराधीन तो हुई, यहां तक कि मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग भी नहीं करता हूं हाँ। मेरे पास सड ऐश्वर्य है, मैं आत्माराम हूं, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूं, फिर भी मैं मेरे ऐश्वर्य का भोग भी अपने भक्तों के बिना नहीं करता, न करना चाहता हूं, नहीं कर सकता। हाँ, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। अच्छा, मेरे भक्त कौन होते हैं? जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं, जिनके लिए स्वयं भगवान ही केवल एक गंतव्य है। हाँ, उसके लिए और कोई गंतव्य नहीं है, न किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य, धन संपत्ति, न किसी भी प्रकार का नाम, न उसे चेले चपाटों की जरूरत है कि नहीं मेरे बहुत फॉलोअर्स होने चाहिए। किसी भी प्रकार की जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसका गंतव्य केवल 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 मुझे भगवान ही चाहिए। एकेह कुरुनंदन, कृष्ण भगवत गीता में जैसे कहते हैं ना, एकेह कुरुनंदन, एक ही लक्ष्य, कृष्ण ही मेरे गंतव्य है। उन लोगों का मैं सेवक हूं, मैं उनके बंधन में हूं। इसलिए कृपया आप सीधे अम्बरीश महाराज के पास जाइए। यहां पर शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। भगवान आत्मनिर्भर है, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। सड ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है। अपने भक्तों के बिना वो आनंद नहीं ले पाते। अच्छा, तो वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में तो कोटि 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 भक्त है, जहां पे भक्त इतने सारे हैं कि भगवान जितना दिव्य आनंद कोटि कोटि अनंत काल तक लेना चाहे तो ले सकते हैं। तब प्रभुपाद जी यहां आगे कहते हैं कि फिर भी क्योंकि ये भगवान अनंत है, वो अपने अनंत भक्तों की संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाने के लिए वो और देखते हैं कि नीचे भौतिक जगत में जो जो बद्ध अवस्था में जो मेरे भक्त जन है तो सभी भक्त यहां पे, लेकिन जो इस समय बद्ध अवस्था में बैठे हैं वो भी अगर भक्त बन के मेरे धाम वापस लौटे तो मेरा दिव्य आनंद जो है, मैं सड ऐश्वर्य का भोग और अच्छी तरह से कर सकूं। जो बेटा अपने साथ रहता है, अपने सुख में सुखी है, जो मेरे साथ है उसकी मैं चिंता इतना नहीं करता हूं, मैं उसकी चिंता ज्यादा करता हूं जो मेरे साथ नहीं है वो बेटे की। ये इस भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं, हम उस बेटे का या बेटी का इतना चिंतन नहीं करेंगे जो हमारे साथ है, जो हमारे से दूर है, भले ना केवल चार घंटे के लिए स्कूल गई है, या स्कूल गया है बेटा, उसका चिंतन करते कि वो सलामत तो है ना, वो कब आएगा, वो आएगा तो आनंद बढ़ेगा। ये एक जो कण मात्र का हमारा जो गुण है, ये वास्तव में भगवान का गुण है। इसको अनंत कर डालो, इसको कोटि 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 गुना गुनो, तो हर माता या हर पिता ये समझ पाएगा, या हर गुरु ये समझ पाएगा उसके शिष्य के प्रति जो उसका प्रेम होता है उसको कोटि गुना प्रेम भगवान हर जीव के लिए इस तरह से विचार करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए हमारे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए चल रहा है और हम लोग चला रहे हैं, कि यहां के अनंत कोटि जीवात्मा जो इस ब्रह्मांड में है, भगवान की देखो कितनी अनंत शक्ति लगी ना, कोटि 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 जीवात्मा उधर है और इधर बहुत ही कम है। शिला प्रभुपाद कहते इधर 1% लोग भी नहीं है, लेकिन फिर ये 1% लोग भी अनंत कोटि हो जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि जीव है, मीन्स कितनी अचिंत्य शक्ति रहेगी। तो भगवान शिला प्रभुपाद जी कहते हम इन लोगों को भक्त बनाना चाहते हैं। क्यों? भगवान हम लोगों के साथ भी आनंद लूटना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम में से कोई उनके धाम में जाए, उनके साथ खेलें, उनको कभी खेलने से रोकें, कभी उनको डांटें, कभी उनको संवारें, अलग अलग प्रकार की वो भी इच्छाएं कर रहे हैं हमारे से। और हम लोग कभी कभार ही सोचते हैं, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से यहां तो उपस्थित सारे लोग सोचते हैं कि हमें भी जल्दी से जल्दी भगवत धाम जाना है, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं यहाँ के इस लोक के वासी। अच्छा, हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग इस्कॉन के हैं अब उन्हीं पे केंद्रित कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं सालों साल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक लिंक की कमी हो जाती है जिससे हमें वो महसूस नहीं हो रहा है कि हमको भगवत धाम जाना है, हमको दिव्य आनंद का एक संगी बनना है, हमको यहां पे क्यों उस आनंद का एक कण का अनुभव नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, एक बड़ी चेन है, एक बड़ी चेन में अगर एक कड़ी भी बीच में से टूट गई है या निकल गई है तो वो चेन का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक हमारी स्थिति रहती है। हमारे पास बहुत कुछ है, शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, हाँ इतनी बड़ी इस्कॉन संस्था है, हाँ हर अपने घर के आसपास में इस्कॉन के मंदिर है, इस्कॉन को मंदिर को चलाने के लिए 70, 80, 100, 150 ब्रह्मचारी है जिन्होंने अपना जीवन पूरा दे दिया है, समर्पित किया है कि भाई एक मंदिर अच्छी तरह से चले। क्यों अच्छी तरह से चले? ताकि आजू बाजू के जो 25-50 लाख की बस्ती है वो लोग मंदिर में आके भजन कीर्तन सेवा कर सके। एक्चुअली ये कॉन्सियसनेस ही हमें, ये चेतना ही हमें सदैव बनाए रखना चाहिए कि मंदिर में निवासी भक्त ब्रह्मचारी हैं चाहे व्हाइट ड्रेस में बैठे हुए, लेकिन मंदिर के निवासी भक्त जो अपना प्रयत्न करते हुए इस मंदिर को चला रहे हैं, हाँ वो सबसे बड़ा परम कल्याणकारी जीव है, परम कल्याणकारी, वो लोग ही परम कल्याण कर रहे हैं। आजू बाजू विस्तार के 25-50 लाख जीव जो सदैव अपने गृहस्थी कार्यक्रम में बिजी रहते हैं उनको एक अच्छी सी टोटली फ्री सर्विस दे रहे हैं, हाँ 100% फ्री, एक रुपये का टिकट अपना इस्कॉन में किसी भी चीज के लिए नहीं है, न कीर्तन के लिए है, न भजन के लिए है, न प्रवचन सुनने के लिए है, न प्रसाद के लिए है, भोजन के लिए जो इस युग में कितना महंगा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन दुर्लभ होते जाता है। मोबाइल आसानी से मिलेगा लेकिन चावल मिलना दुर्लभ हो जा रहा है। मोबाइल की दुकानें आप मीरा रोड में जाके स्टेशन के आसपास चावल 1 किलो खरीदना है ना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल खरीदना है तो 50 दुकान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कलयुग का वासी है, उसको अक्कल ही नहीं है किसी भी प्रकार की। तो यहां तो देखिए वो बोलते प्रसाद जितना चाहिए उतना लेके जाइए, प्रवचन के पहले प्रसाद की कूपन दे देते हैं कि भाई तुम्हारा प्रसाद सुरक्षित है, चिंता मत करो, प्रसाद कूपन जेब में रख के ही शांति से प्रवचन भगवान का कथा सुनिए। सब कुछ फ्री है और वो सेवा केवल पॉसिबल है ना मैं या आप कर पाएंगे, ये केवल ये ब्रह्मचारी जो है या जो फुल टाइम व्हाइट ड्रेस्ड, हाँ जो यहाँ पे है फुल टाइम, उन्हीं की वजह से यह संभव होता है। इसलिए सदैव हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए उन लोगों के प्रति और सदैव उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता होनी चाहिए। हाँ अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है, ये सोचता है कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं और वो प्रयत्न जीवन भर करता रहेगा तो भी वो कभी कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं, पूरे जीवन की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन में वो कृष्ण का भक्त बन सकता है अगर वो ये समझ ले कि मुझे एक्चुअली कृष्ण का भक्त बनना है तो मुझे क्या करना होगा, कृष्ण के भक्त का भक्त बनना होगा। ये सिद्धांत है, लेट मी बिकम अ डिवोटी ऑफ अ डिवोटी। इतने हमारे आसपास तो 70, 80, 100 भक्त है, किसी एक भक्त के ऊपर पूर्ण विश्वास करके आप उसके केवल भक्त बन जाओ, हाँ उसके केवल भक्त बन जाइए, फिर देखिए कितना सरल ये आध्यात्मिक मार्ग हो जाएगा। आप कभी ये तो नहीं कह सकते कि मुझे एक ही भक्त पे विश्वास नहीं है, मैंने अभी तक एक भी ऐसा नहीं देखा जिसपे मैं विश्वास कर सकूं, ये असंभव है। अगर ये अगर आप सोचते हैं तो प्रॉब्लम उन 100 भक्त में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जैसे रावण क्या सोचता है, ये मंदोदरी जो है ना वो सीता मैया की ईर्ष्या करती है, हाँ इसीलिए ये बार बार कहती है सीता को वापस भेज दो, वापस भेज दो, वापस भेज दो। वास्तव में मंदोदरी ईर्ष्या नहीं कर रही थी, वास्तव में रावण खुद राम की ईर्ष्या कर रहा था। तो क्योंकि वो खुद राम की ईर्ष्या करते हैं तो उनको मंदोदरी में सीता के लिए ईर्ष्या दिख रही है। वास्तव में जब हमारे हृदय में कलमस है हम लोग कहते कहां अच्छा भक्त है, बताइए ना शुद्ध भक्त कहां है। कल जब ये मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि आपने इस्कॉन में शुद्ध भक्त कितने हैं, ढूंढना चाहिए एक्चुअली कौन कौन है। हाँ तो हर एक को पूछेंगे तो कोई अलग अलग नाम बताएगा, कोई बोलेगा ये महाराज, कोई बोलेगा वो महाराज। हाँ अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन रखा जाए तो हो सकता है हम लोग लड़ाई झगड़े पे भी उतर आएंगे। हाँ कोई बोलेगा मेरा ही गुरु शुद्ध है, कोई बोलेगा मेरा ही गुरु शुद्ध है। तो मैंने सोचा कि नहीं क्यों नहीं हम प्रभुपाद जी से ही पूछे और समझे कि एक्चुअली आपके मूवमेंट में शुद्ध भक्त कौन है, ये जरा हमको बता दीजिए तो हमको पता चले। तो मैंने फोलियो खोला, हाँ और वेदाबेस वगैरह जितना डेटाबेस प्रभुपाद जी का था सब खोला। अब प्रभुपाद जी से ही प्रश्न, शुद्ध भक्त कौन है, तो 1967 का एक निकला कोटेशन जहां पे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट करके एक किताब लिखी है तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, उस किताब में इसका वर्णन भी है। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद जी से पूछते हैं, वो क्योंकि नए थे ना, दो ही साल हुआ था, और बड़ी नम्रता से पूछते हैं, शिला प्रभुपाद जी आपके अलावा पृथ्वी पे अभी शुद्ध भक्त कौन है और कितने हैं? क्योंकि वो लोग नए थे, उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि और भी कोई रहेंगे तो हम समझ लें। तो तमल कृष्ण महाराज पूछते, शिला प्रभुपाद जी आपके अलावा अभी पृथ्वी पे शुद्ध भक्त कौन है? तो प्रभुपाद जी ने अपने वरिष्ठ भक्त के सामने देखा और पूछा कि अपनी इस्कॉन मूवमेंट में कितने साधु है, कितने लोग हैं? तो उस समय तो केवल दो ही साल हुए थे ना इस्कॉन के, तो उन्होंने बोला करीबन 70-80 लोग हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ये 70-80 कितने हैं? 80, अच्छा ये सभी शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी ने कहा ये सभी शुद्ध भक्त है, एक्चुअली वास्तविक है। शिला प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं, हमें क्यों शंका आ रही है? अब फिर भी शंका आ रही है तो 70-80 में से कोई एक को ही ले लीजिए ना, चलेगा। जैसे मान लो मैं ये निर्णय करूं कि आज से मैं बनामली प्रभु का भक्त बन जाता हूं, मेरा इतना तो एटलीस्ट गारंटी हो गया कि मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा ही। क्यों? क्योंकि बनामली भक्त, बनामली प्रभु जी है, वो गोपाल कृष्ण महाराज के भक्त है। गोपाल कृष्ण महाराज किसके भक्त है? शिला प्रभुपाद जी के भक्त है। शिला प्रभुपाद जी कौन है? गोलोक केर प्रेमदान, गोलक से भेजे हुए स्वयं है, जो इस तात्पर्य को यहां लिख के ये कहते हैं कि हम तो केवल यहां अनंत कोटि भक्तों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए आंदोलन चलाने आए हैं। खुला लिखा है, देखिए यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त है किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अधिकाधिक भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लेकिन थोड़ा सटल और थोड़ा कठिन, थोड़ा ऐसा भी साधु का कुछ प्रवचन, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ना कि कभी कभी साधुओं का तलवार चलता है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तलवार से जरा हम देखें कि वो कौन सी तलवार चला के हमको क्या संदेश देना चाहते हैं इस संदर्भ में। थोड़ा कठिन लगेगा सुनने समझने में, लेकिन समझना अच्छी तरह से चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भक्त बड़ा सरल हृदय का तो होता है, लेकिन क्योंकि पूर्ण ज्ञान कभी कभार न होने की वजह से, हालांकि भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान भी होता है जो उसे चाहिए कि वो जाने और वो नहीं जानता है, तो उसके भक्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं बनी रहती है, और वो न जानने की वजह से किसी गलत व्यक्ति को सच्चा भक्त मान के अपना पूरा जीवन उसमें दे देता है, और फिर उसको बाद में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। भक्त का भक्त बनना अति आवश्यक है, लेकिन इस्कॉन का हर वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है जो 100% शिला प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के अनुसार ही जीना चाहता है, रहना चाहता है, प्रचार करना चाहता है। उसका हर कार्य जो है वो 100% शिला प्रभुपाद जी द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर शिला प्रभुपाद जी के द्वारा वो अपना कार्य सर्टिफाइड नहीं है तो उस क्षण के लिए हम शुद्ध भक्त नहीं है, जब तक हम वो कार्य कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होता है? होता है, उसमें क्या है, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम राजा है, कब तक राजा है? जब तक स्वप्न चल रहा है। जिस क्षण स्वप्न खत्म हो गया, हो गए हम लोग मीरा रोडवासी, तुरंत ही राजा से मीरा रोडवासी हो सकता है। तो जब तक हम शिला प्रभुपाद जी के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, जब तक हम हरिनाम हरि सेवा आचार्यों के परंपरा के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम शुद्ध भक्त है। जिस क्षण हमने ये नियम तोड़ दिया उस क्षण हम शुद्ध भक्त नहीं है। अच्छा, तो नियमों का कैसे पता चले? पहली बात तो है, श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और छोटी कम से कम 64 किताबें जो प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखी है, उन सभी ग्रंथों का, क्योंकि आपकी भाषा में अनुवाद हो चुका है, आपको पढ़ना ही चाहिए, हमें पढ़ना ही चाहिए। जिस व्यक्ति ने अब तक जीवन में शिला प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथों को श्लोक भाषांतर और तात्पर्य नहीं पढ़ा है पूरा का पूरा, उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो अन्य ग्रंथों का सहारा ले और उस अन्य ग्रंथों पर आधारित भी प्रचार करे। इसको कोई अधिकार नहीं होता है। अगर बनामली प्रभु ने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो हो सकता है इस ग्रंथों के सहायक कुछ ग्रंथ हैं तो उसको ले सकते हैं। जैसे चैतन्य भागवत हमारे इस्कॉन के भक्तों ने भाषांतर किया है। अगर जो शिला प्रभुपाद जी ने चैतन्य भागवत भाषांतर नहीं किया है, लेकिन अगर आपको इच्छा है चैतन्य भागवत की, तो प्रभुपाद के मूवमेंट के भक्त जिन्होंने प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लिया है, केवल उसी को अधिकार है चैतन्य भागवत भाषांतर करने का। और फिर क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, हम केवल उसी चैतन्य भागवत को लेकर पढ़ सकते हैं। अन्यथा देखिए स्पेक्युलेशन, नाम के लिए या प्रख्यात बनना है, चेले चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करते रहे लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। उस क्षण हम शुद्ध भक्त नहीं है। उस समय प्रभुपाद जी ने क्यों बताया कि ये सारे शुद्ध भक्त हैं? क्योंकि उस समय इतना अच्छा समय था, उन लोगों को और कुछ पता ही नहीं था। वो सारे विदेशी जिनको प्रभुपाद के अलावा कुछ पता ही नहीं था, वो लोग 100% जो प्रभुपाद कहते हैं वो सही है, जो प्रभुपाद कहेंगे वही हम करेंगे, वही उनका जीवन था, इसलिए वो सब शुद्ध भक्त थे। 1967 में वही सिद्धांत था, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं था। ज्यादातर उसमें भारतीय उस समय कोई नहीं था, सब विदेशी लोग थे, तो वो सारे के सारे शुद्ध भक्त थे। लेकिन ये सिद्धांत को तोड़ने वाले शुद्ध भक्त है ऐसा प्रभुपाद जी नहीं कह रहे। सिद्धांत है, जैसे मुझे 1975 में शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में अपने भक्तों के साथ एक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। प्रभुपाद जी का एक नित्य लीला थी कि वो मॉर्निंग वॉक करेंगे, सुबह जुहू बीच पे चलना या वृंदावन के परिक्रमा करते हुए चलना अपने भक्तों के साथ। तो उसमें अक्षयानंद प्रभु थे। अक्षयानंद प्रभु जी चर्चा विचारणा करते करते पूछे, बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं प्रश्न को छेड़ रहा हूं, हो सकेगा किसी को दुख भी होगा, लेकिन वो सिद्धांत को स्थापित करने के लिए मैं छेड़ रहा हूं, इससे संबंध में भी है। अक्षयानंद ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी आपका तुलसीदास जी के बारे में क्या ख्याल है और रामचरितमानस के बारे में क्या ख्याल है, आपका क्या आदेश है हमारे लिए? ये कब की बात है? 1975 वृंदावन मॉर्निंग वॉक, अक्षयानंद प्रभु उनके शिष्य पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, क्लियरली इट इज रिटन इन फोलियो, He is not a pure Vaishnav. First sentence. मैं तुलसीदास के प्रति ऐसा कोई वाक्य कभी नहीं उच्चार सकता हूं, अगर प्रभुपाद जी नहीं बोले हैं तो मेरा कोई क्षमता नहीं है। मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता हूं कि he is not a pure, इनके लिए भी नहीं बोल सकता, इनके लिए भी नहीं बोल सकता, इनके लिए भी नहीं बोल सकता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा he is not a pure Vaishnav. Then he said he has Mayavad touch. He has मायावाद टच, उसमें थोड़ा सा मायावाद मिला हुआ है। So we should not accept that ग्रंथ and him. Folio, 1975 मॉर्निंग वॉक, अक्षयानंद प्रभु। अब थोड़े दिन पहले यहां पे एक कथाकार कह रहे थे, रामायण कथा करते हुए कह रहे थे कि रामायण में ये बताया है, रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी ने बताया। फिर वो स्वयं भी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ कहा है कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए और इनको नहीं करना चाहिए। फिर खुद ही कहते हैं, मैंने केवल सुना है, मैंने नहीं पढ़ा है कहां प्रभुपाद जी ने ये कहा है। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने तो पढ़ा, इसमें 70% भागवत है और 30% वाल्मीकि रामायण है। किसमें? रामचरितमानस में। वो क्या कहते हैं? तीन सेंटेंस को गौर से सोचिए। पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? मैंने सुना है प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। फर्स्ट स्पेक्यूलेशन, मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, क्या सुना है मैंने? मैंने सुना है प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने तो पढ़ा उसको, उसमें मैंने कहीं पर कुछ गलती नहीं पाई। 70% भागवत है, 30% वाल्मीकि रामायण है, मुझे तो वहां कहीं दोष नहीं दिखाई दिया। अब किसी व्यक्ति का मैं विरोध करने के लिए नहीं उच्चार कर रहा हूं, सिद्धांत को समझने के लिए, स्थापित करने के लिए कह रहा हूं। ना मैं मेरा कोई ज्ञान प्रकट करने की मुझे इच्छा है, ना मैं सिद्धांतों का, लेकिन प्रभुपाद जी की लीगेसी जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार तो हम हर दीक्षित भक्त का होता है, और उस अधिकार का उपयोग करके व्यास आसन पे बैठने के बाद व्यासदेव जी की कृपा से बोलना गलत नहीं होगा। अब आप बताइए इसमें क्या संदेश मिल रहा है हमें। फर्स्ट स्पेक्युलेशन, सेकंड प्रभुपाद से ज्यादा मैं जानता हूं, उन्होंने ये कहा लेकिन मैंने पढ़ा, मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। मीन्स आई नो बेटर देन हिम, करेक्ट, आई नो बेटर देन हिम, मैं उनसे ज्यादा अच्छा जानता हूं। 70% भागवत है, 30% वाल्मीकि रामायण। तो शिला प्रभुपाद जी ने तो खुला ही कहा है कि तुम मेरा भागवतम पढ़ो, रामायण की इच्छा हुई तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तुम भगवत धाम जाओगे, खुला ही जब बोला है। और वो अवेलेबल है, इतना सरल है, तो फिर हमको वहां जाने की कहां जरूरत पड़ गई। कौन सा व्यक्ति है, मैं इस दावे के साथ कहता हूं 99% इस्कॉन भक्तों ने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, गारंटेड। इतनी एक लाइफ में हम इतना अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकते, बहुत ही कम दुर्लभ लोग हैं जिन्होंने ऐसा वर्ड टू वर्ड। और अगर प्रवचन भी करना है तो कौन सा कमी है हमारे पास, एक श्लोक पे ही चाहे तो आप एक एक महीना बोल सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि एक श्लोक पे पूरा जीवन अपर्याप्त है बोलने के लिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं संसार में जितने प्रिंटिंग प्रेस है उन सभी प्रिंटिंग प्रेस को अगर लगा दूं कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के लिए, और वो अनंत काल तक अनंत जीव उसमें प्रिंटिंग का काम करते रहेंगे, तो भी पूर्ण नहीं होने वाला है, ये भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं। और इस दिव्य परंपरा में हम लोग आए, ये तो बहुत ही बड़ी विरल बोलते ना दुर्भाग्य हमारा है कि हमको इतना दिव्य परंपरा मिला है। हम जो गौमुख से निकला हुआ गंगा जल है, जो 100% क्रिस्टल क्लियर प्योर वाटर, वो छोड़ के बोलते हैं कि मैं वो वाराणसी से जो आगे निकलती है ना गंगा, उधर का जाके जल पीता हूं, गंगा में क्या दोष है? नहीं भैया, गंगा में कोई दोष नहीं है, गंगा 100% प्योर है, लेकिन अब इसमें जो मलमूत्र जमा हुआ ना संसार का, हाँ, उस मलमूत्र का भी असर तुम्हारे शरीर पे होगा। गंगा के जल का असर केवल आत्मा पे होगा, क्योंकि वो दिव्य है, आत्मा दिव्य है। हाँ, आप कहीं भी स्नान करो, किधर का भी गंगा जल पियो, दिव्य जो उसका गुण है वो दिव्य आत्मा पे असर करेगा। लेकिन इसमें जो मिलावट है, वो मिलावट क्योंकि भौतिक है, वो आपके भौतिक शरीर पे जरूर असर करेगा। और हम कौन से ऐसे महात्मा हो गए कि भौतिक शरीर वासुदेव घोष की तरह सड़ते रहे फिर भी हम अच्छा हरिनाम करेंगे, ये तो हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो बड़ा सटल पॉइंट होता है इसको समझने के लिए। इस्कॉन के हर एक भक्त का यह कर्तव्य है, कृपया कृपया कृपया, हाँ, कोई बड़े अच्छे प्रचारक न बन सके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोला बेचा श्रीधर को कोई नहीं जानता था महाप्रकाश लीला के पहले, हाँ, सारे अंतरंग भक्त पार्षद जो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु के साथ अंदर कीर्तन करते थे दिन रात, हाँ, जो एक एक महात्मा थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते इससे भी बढ़कर एक महात्मा है वो कोला बेचा श्रीधर है, इसके ऐश्वर्य को मैं एक दिन प्रकट करूंगा, ये कितना धनी व्यक्ति है। कोई नहीं जानता था, जरूरी नहीं है कि उसको जानना समझना जरूरी है, जरूरी क्या है हम अपने गुरु परंपरा के आधार पे चल रहे, सिद्धांतों पे चल रहे। अपने जीवन में किसी एक को भी हम भक्त बना सकेंगे तो भगवान खुश है, उतनी अगर हमारी क्षमता है तो, हाँ, लेकिन फिर अनेकों बनाने के चक्कर में, अनेक नाम के चक्कर में हम अगर सिद्धांत और परंपरा को तोड़ने की शुरुआत करते हैं तो हम ही 200 साल के बाद उसके मूल आचार्य रहेंगे। कौन? परंपरा को तोड़ने वाले आचार्य, जो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने 5200 साल पहले बताई थी वो कितने सालों में खत्म हो गई थी, कितने सालों में दुर्लभ हुई थी भगवत गीता? हार्डली 1000 ईयर्स भी नहीं लगे थे, हाँ, क्योंकि ये जो वैष्णव परंपरा जो वापस स्थापित हुई वो शुरुआत जो एक्चुअली शिवजी ने आके की, शंकराचार्य के रूप से वहां से मायावाद से शुरू किया उन्होंने, वो 3,350 साल पुराना इतिहास है। यानी स्वयं भगवान की भगवत गीता को हम लोगों ने परंपरा से खंडित करके फेंक दिया था। ठीक है, वो तो बहुत दूर का इतिहास है, कौन जानता है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, और भक्ति विनोद ठाकुर का प्रचार 150-200 साल पहले, उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा भाषांतर में आप पढ़ेंगे टीकाओं में,
तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कई कितने सालों से यहाँ केवल आउला बावला संप्रदाय ही चल रहा है और जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति थी वो तो खत्म हो चुकी है। वो खत्म किसने की? हम लोगों में से ही किसी एक ने की। शुरुआत की एकदम छोटे से डाइवर्सन, छोटा सा एक, अरे एक छोटा सा फेर कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो छोटा सा फेर आगे जाके थोड़ा दो फेर होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, और फिर पूरी परंपरा ही बदल जाती है। परंपरा बदलने के लिए हम दुष्ट लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता है, परंपरा बनाए रखने के लिए हमको बहुत समय लगता है। कम से कम परंपरा बनाने की शक्ति और समझ नहीं है तो बिगाड़ने का कार्य तो हम लोगों को प्रभुपाद जी के लिगेसी वाले को कभी नहीं करना चाहिए। हम कितनी सेवा करोड़ों रुपए की करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, आप परंपरा के दायरे में रह के कितना कर पाए वो ज्यादा शास्त्र, आचार्य और भगवान देखेंगे। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट शिला प्रभुपाद लिगेसी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। हाँ, भले फिर वो एकदम ही अप्रख्यात व्यक्ति हो जिसको कोई नहीं जानता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी आप गोलक वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण आपको उनसे बिलवाएंगे कि ये बहुत सालों से पहले आ चुका है इधर। आप बोलेंगे अरे मैं इतना बड़ा प्रचारक था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इतने ये किए वगैरह, लेकिन तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, परंपरा के लिए नहीं थे, तुम अपने लिए कुछ कर रहे थे। मैं किसी व्यक्तिगत विरोध का यहां पे वर्णन नहीं करना हूं, ऐसा कोई संदेश मत लेना, क्योंकि ना तो मुझे कोई प्रख्यात होना है, ना ही कोई मुझे चेले चपाटे की जरूरत है। मैं अपने आप में कुछ दो चार मित्र भक्तों के साथ संतुष्ट हूं। मेरे बनामाली प्रभु है, मेरे चांद गोपी प्रभु है, कमल लोचन प्रभु जी है, मेरे मायापुर के दो चार भक्त है, वृंदावन के दो चार भक्त है, मैं उतने दो चार लोगों में संतुष्ट हूं। और कोई नहीं भी रहेंगे तो हमारी बेटियां हैं विष्णुप्रिया, उससे भी मैं, मायापुर की जन्मी भक्त है, मैं उससे भी संतुष्ट हूं। हम दोनों मिलके भी मायापुर में चलते चलते थोड़ा गंगा का पानी पियेंगे, राधा माधव का प्रसाद खाएंगे, अब पूर्ण विश्वास है कि हम ऐसे करते करते ही एक दिन भगवत धाम चले जाएंगे। कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ और नहीं मिला तो भी चलेगा, कुछ नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि पूरा विश्वास है जो शास्त्रों ने कहा है कि केवल प्रसाद खाइए, भगवत धाम जाइए, केवल अपराध मत कीजिए किसी का। हाँ, किसी को अपराध करने का, किसी को दुखी करने का कार्य नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। एक बार की एक घटना है, एक बहुत महान प्रख्यात भक्त थे, हाँ, जिनका नाम था रूप कविराज। सुना है आपने कभी रूप कविराज का नाम? अपने परंपरा के हैं, आचार्य है, एक आचार्य थे, आचार्य बोले थे, एक परंपरा के एक अच्छे महान भक्त, शुद्ध वैष्णव थे, प्रेम भक्ति के स्थान पे थे वो लोग स्वयं। ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना, जो लोकनाथ महाराज के शिष्य, उनके एक शिष्य थे गंगा नारायण प्रभु, उनके और एक शिष्य थे जिनका नाम मैं अभी भूल जा रहा हूं, उनके ये शिष्य थे रूप कविराज। उनके जैसा उस समय में राधा कुंड में कोई भक्त नहीं था, उनको टॉप मोस्ट राधा कुंड में वो पदवी थी, और उनका नित्य कार्यक्रम श्रीमद भागवतम का प्रवचन देना, और राधा कुंड के बड़े बड़े महंत लोग आके उनसे प्रवचन सुनते थे। वो इतने प्रख्यात साधु थे और प्रेमवश, हाँ, इट इज डिस्क्राइब्ड वेल कि वो प्रेम भाव स्तर पे थे, इतना उच्च कोटि के परम वैष्णव थे। एक दिन की घटना हो गई, एक माता जी थी जिसका नाम था कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, जो बेटी थी गंगा नारायण और विष्णु प्रिया की। हाँ, गंगा नारायण प्रभु जी और विष्णु प्रिया माता जी, ये जो पति पत्नी थे उनकी बेटी थी कृष्ण प्रिया माता जी। अच्छा, ये गंगा नारायण प्रभु जी कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? लोकनाथ महाराज के शिष्य। ये कृष्ण प्रिया ठाकुरानी भी एक महान भक्त थी, वो भी उच्च कोटि की, उसको वहां के लोग ने पदवी दिया था राधा कुंड निवासिनी ठाकुरानी, ये इतनी उच्च कोटि की महान व्यक्ति थी। लेकिन स्त्री थी तो भागवत प्रचार इतना, भागवत प्रवचन नहीं करती थी, लेकिन वो बेजोड़ थी। यहां तक उतनी शुद्ध भक्त थी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जिस शालिग्राम शिला का जो सेवा करते थे, वो शालिग्राम शिला जो परंपरा में मुकुंद गोस्वामी के पास उस समय थी, उन्होंने इसको सही समझ के उसको दिया कि कृष्ण प्रिया ठाकुरानी आप इसको लीजिए और इसकी सेवा आप अभी चलाइए। मुकुंद गोस्वामी जिसके पास चैतन्य महाप्रभु की शालिग्राम शिला थी, स्वयं जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी, उन्होंने आगे चलते हुए जो दिया आगे चलते चलते ये मुकुंद गोस्वामी के पास आई थी, मुकुंद गोस्वामी ने कृष्ण प्रिया ठाकुरानी को दे दिया था। अब कृष्ण प्रिया ठाकुरानी क्योंकि उसका 100% जो चेतना था वो भगवान में ही रहता था, वो एक ही समय भगवान की 2, 3, 4, 5, 10 सेवा भी कर सकती थी। वो वही लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम जप कर रहे हैं तो भागवतम श्रवण नहीं कर सकते, अगर हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो जप नहीं कर पाएंगे। किसी एक को भी ठीक से नहीं कर पाते, 2, 3, 4, 5 की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन वो कर सकती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो रूप कविराज का भागवतम प्रवचन राधा कुंड के तट पर चल रहा था, तो कृष्ण प्रिया ठाकुरानी माता जी आके जाके बैठ गए प्रवचन सुनने के लिए, भागवत कथा एक महान शुद्ध प्रेमी भक्त से। हाँ, ऐसा ऐश्वर्य बोलते ना, ऐश्वर्य मिला है और अवसर मिला है तो क्यों ना सुने, तो वो बैठ गई। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि उसको 2-3 सेवा साथ में करने की आदत थी, वो जपो भी कर रही थी और श्रवण भी कर रही थी। हालांकि उनके लिए ये संभव है, कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं, हम नहीं कर सकते। तो रूपक अविराज ने जब देखा कि अरे ये जप भी कर रही है और प्रवचन सुनने भी बैठी है, तो उन्होंने डांट दिया, माता जी आप क्या कर रही है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप भागवत सुनने बैठी है या जप कर रही है, ये देखाव करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप दो कार्य एक साथ में कर सकती है। हालांकि वो इतनी नम्र भक्त थी, कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसने जप माला छोड़ा और श्रवण करने बैठी। लेकिन तुरंत ही रूपक अविराज को बॉडी पे लेप्रेसी आया, तुरंत ही आया, इमीडिएट लेप्रेसी का चिन्ह सारे शरीर पे दिखने लगा और थोड़े ही दिनों में पूरा शरीर लेप्रेसी से ग्रस्त हो गया, एकदम दुबले पतले मरे हुए हो गए। वैष्णव अपराध का पहला ये सजा। अच्छा, चेतना कैसी हो गई, हाउंटेड। अपराध जब हम किसी वैष्णव का करते हैं तो हमारी चेतना हाउंटेड हो जाती है। हाउंटेड मतलब उसकी चेतना अब आगे क्या करेगी, केवल अपराध ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। उसको अपराध करने वाले जब पूर्व के जितने लोग हो गए ना, वो सारे लोग आके उसको वशीभूत कर लेते हैं। अब वो केवल क्या कर सकता है, केवल लोगों का अपराध कर सकता है। हरे कृष्णा, हिज ग्रेस बीमा प्रभु जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो अपराध करने वाले व्यक्ति का चेतना कैसा हो जाता है, वो अन्य लोगों का केवल अपराध ही अभी करेगा। उसने पहले वहां के वैष्णवों की निंदा शुरू की। और ये बहुत सटल पॉइंट है, जब हम अगर हमारे जैसे साथ वाले छोटे मोटे वैष्णवों की निंदा करें और अगर हमें कोई रोक रहा है फिर भी हम न रुकें, टोक रहा है फिर भी हम न माने और वो चालू रखें, तो इसका निश्चय परिणाम एक दिन ये आएगा कि हम अपने गुरु की भी निंदा करेंगे और उसका निश्चय परिणाम एक दिन ऐसे आएगा कि हम प्रभुपाद जी का विरोध करेंगे। ये गारंटेड है, ये देखा गया, अनुभव किया गया, सत्य है इस्कॉन का। अगर हम पहले से नहीं संभलेंगे, अपने आप को नहीं संभालेंगे, तो आगे जाके ये परिणाम आता ही है। शुरुआत केवल एक छोटे से वैष्णव की निंदा से होता है, अरे भाई ये क्या है, सदैव प्रभु तो ऐसे है वैसे, हमको लगता है छोटा है, क्या होगा उससे, इसमें क्या सकती है, क्या मेरा बिगाड़ लेगा। लेकिन फिर वहां से नेक्स्ट स्टेज, अब फिर तो लोग अपने गुरु की भी शुरू कर देते हैं, अरे हमारे गुरु तो ऐसे है वैसे, ये है वो है, ये गुरु से बड़ा हो जाता है उसी दिन से। और थोड़े दिन के बाद बोलता है प्रभुपाद जी को संस्कृत नहीं आता है, प्रभुपाद जी को ये नहीं मालूम है, प्रभुपाद जी ने ये गलत लिखा है, प्रभुपाद जी को क्या पता, मुझे मैंने पढ़ा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्या नहीं पता चल रहा है, क्या मैंने देखा कुछ गलत नहीं है। ये शुरुआत एकदम धीरे से हुई थी, लेकिन ये ऐसी तेज गति से स्पीड में फिर गाड़ी चलती है ना, कि ये रूपक अविराज आगे जाके बंगाल के जंगलों में अकेला बिना किसी की सहायता से कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरा और मरकर तुरंत ही भूत प्रेत योनि में प्रवेश करता है और कहीं कितने सालों तक भूत प्रेत बन के घूम रहा है। आज भी ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी को वैष्णव अपराध करने की आदत है ना, तो ऐसे ही पूर्व अपराधी भूत उसको पकड़ लेते हैं और उसका वो कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो जितना वैष्णव अपराध करना है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्योंकि उसकी इच्छा अधूरी रह गई है, अपराध पूरे उसके नहीं हुए, उसको वो समझ नहीं आ रही। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए एक्चुअली व्यक्ति को, बड़ा ही सावधान रहना चाहिए कि हमें किसका क्या अपराध करना है नहीं करना है। जब भी कोई कंफ्यूजन हो, जब भी कोई ये हो, तब जाके वैष्णवों से, वरिष्ठ वैष्णवों से हमें अपना मंतव्य प्रकट करना चाहिए कि मेरा ये मंतव्य उनके बारे में आपकी क्या राय है। कल विश्वरूप प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट बताया ना, आपका इवन शत्रु वैष्णव भी रहेगा ना तो मृत्यु के समय उसमें इतनी शर्म तो रहेगी कि वो आके आपके कान में हरिनाम बोलेगा। आपका शत्रु भी रहेगा तो भी, अगर आप मर रहे हैं ना तब वो ये नहीं सोचेगा अरे इसने जीवन भर मेरी निंदा की थी, मेरे को परेशान किया, भले मर रहा है सड़ने दो, ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि वो वैष्णव है, उसने भी हरिनाम लिया है। मृत्यु के समय अगर वो अपने को देखेगा ना कि मर रहा है बेचारा तड़प रहा है, उसके हृदय में वो प्रेम भावना आई जाएगी कि नहीं नहीं मैं इसको अभी इस समय कुछ सहायता करूं, इसके कान में हरिनाम बोलूं, इसको चरणामृत पिलाऊं, हाँ इसको भगवान का हार उसके गले में डालूं, उसको वो भावना आएगी ही। उसको भावना नहीं आएगी तो भगवान व्यवस्था करेंगे किसी न किसी की, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये मेरा भक्त का भक्त था, मुझे इसकी रक्षा हर परिस्थिति में करनी। यहां तक इस्कॉन के ब्रह्मचारी और कई कितने भक्त मुझे बताते हैं कि अरे हमारे मम्मी पापा तो इस्कॉन का विरोध करते थे, जप कीर्तन नहीं करते थे, पूरा जीवन ऐसे ही बीता, लेकिन मृत्यु के समय कोई भक्त ने उनको उनके कान में जप भी किया, उनको चरणामृत पिलाया, उनको भगवान का प्रसाद दिया और ऐसे वो मरे। भगवान ने वो व्यवस्था भी उन लोगों के लिए की है, ऐसे कितने लोगों का अनुभव है। थोड़े दिन पहले ही पुणे के एक ब्रह्मचारी ने अपना वेबसाइट पे भी लिखा था, उसके साथ भी यही घटना घटित हुई। मेरे पिताजी 100% इस्कॉन के विरोधी थे, लास्ट मोमेंट पे मृत्यु के समय गोपाल कृष्ण महाराज के एक शिष्य रात को 12 बजे हरिवल्लभ प्रभु जी मेरे घर पहुंच गए, मैंने यहां से फोन किया तो, और वहां बैठ के हरिनाम जप किया। मृत्यु का जो 1 मिनट था वो हरिनाम जप कर रहे थे उनके कान में, जबकि वो 100% विरोधी थे इस्कॉन के। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमको इस्कॉन का अच्छा लगा या कुछ आए के प्रसाद ग्रहण किया। भगवान व्यवस्था करते हैं, क्यों करते हैं, देखते हैं ना कि नहीं कोई ना कोई तो जुड़ा है ना उसके परिवार से, इसीलिए मैं उन परिवार वालों की रक्षा करूंगा। ये अपना केवल सिक्योरिटी नहीं है, ये अपने परिवारजनों का पूरा 100% सिक्योरिटी है, लेकिन साथ में अपना करते हुए कि हम भी इस सिक्योर्ड परंपरा को सिक्योर्ड ही रखें, इसकी हम भी एक छोटी सी सिक्योरिटी फोर्स में एक छोटे से सैनिक के रूप में जमा हो जाए, ये हमारा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य सिद्धांत पे जो चलेगा ना वो सादा भक्त भी रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं होएगा कोई बात नहीं, उसको कोई नहीं जानता है, जितना कोई नहीं जानता उतना आपके लिए अच्छा होगा, भगवत धाम जाना आसान होगा। कुंती महारानी तो खुला कहती है कि धन ऐश्वर्य नाम ये वो, इन लोगों के लिए आपका स्मरण करना दुर्लभ है। और हम देखते भी, हम इस्कॉन में भी देखते हैं, जो पहले एकदम ऐसे बोलते ना भौतिक दृष्टि से भिखारी अवस्था में थे ना, वो तभी वो लोग बहुत अच्छा भक्ति करते थे, लेकिन जैसे ही परिवर्तन कुछ होता है, ऐश्वर्य लक्ष्मी देवी कृपा कर देती है, वो धीरे धीरे उनका चलने का स्टाइल ही पूरा बदल जाता है। आप देखेंगे तो एकदम ऐसे चलेंगे जैसे अरे बहुत बड़े ये हो गए, और धीरे 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 फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कई कितनों का हम लोगों ने देखा है, एक दो ने हाँ। तो भगवान अगर हमको ऐश्वर्य नहीं दे रहे, ज्ञान नहीं दे रहे, फॉलोअर नहीं दे रहे, मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा सिक्योर्ड पोजीशन है, हम उसके लायक हुए नहीं इसलिए भगवान नहीं दे रहे। जिस दिन हम लायक हो जाएंगे हमको मिल जाएगा। प्रभुपाद को एक सेकंड नहीं लगेगी अगर उनको किसी को भेजना है आपके लिए तो। इसी श्लोक पे सिद्धांत पे ही अपना मंदिर अभी बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना, क्योंकि गिरधारी भी चाहते कि पहले मेरे भक्त इधर ये बाय अंदर से ये कांदीवली से मोलुंड से सब इधर पहले मीरा रोड में आके अच्छी तरह से बसे, तब मैं अपना मंदिर बनाऊं और अपने ऐश्वर्यों का भक्तों के साथ भोग करूं, अकेला अकेला क्या भोग करूंगा। गिरधारी चाहे तो 20 साल पहले अपना मंदिर बना सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये सब भक्त लोग इधर मीरा रोड में आके पहले बस जाएं, वो लोग अपना अपना स्थिति अच्छा कर लें, घर बना लें, अच्छी तरह से रह लें, हाँ पूर्ण एकदम चिंता से मुक्त हो जाएं, तब मैं अपना ऐश्वर्य प्रकट करूंगा और इस ऐश्वर्य में मेरे भक्तों के साथ मैं आनंद करूंगा। यही आज का श्लोक है, देखिए क्लियर कट श्लोक में भगवान कहते हैं मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता। कोई कहे मंदिर आपका क्यों नहीं बना इतने सालों के बाद भी, तो इसको ये श्लोक बता देने का, गिरधारी की इच्छा नहीं थी, वो चाहते थे पहले मीरा रोड में कुछ 400-500 हजार भक्त तो मेरे बस जाएं, बिना चिंता किए सबका उनका अच्छा घर बन जाए, हाँ जब वो लोग सब आ जाएंगे बिना चिंता के रहेंगे तब मैं मेरा ऐश्वर्य प्रकट करूंगा, फिर देखिए क्या होता है। और आगे इन भक्तों की कृपा से अब देखिए क्या होने वाला है आगे, मीरा रोड का पूरा इतिहास ही एकदम सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वो भी गोलक वृंदावन की किताबों में, यहां की किताबों में नहीं। इसलिए हर भक्त का कर्तव्य है अपनी अपनी यथाशक्ति, अपनी अपनी यथाशक्ति जितना भी आपके पास जो भी आपके पास धन है, क्षमता है, कैपेसिटी है, हाँ प्रचार की है या चाहे कुछ भी हो, जो कुछ पॉसिबल है राधा गिरधारी मंदिर को दे दीजिए। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम आज से ही कोला बेचा श्रीधर की तरह 50% इनकम भगवान को दे देंगे, ये मैंने आज गुरु के सामने वचन दिया और कल से फिर दिखे ही नहीं, ऐसा नहीं। जो भी है 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया गिरधारी तो 5 रुपया भी डालेंगे ना प्रेम से, अगर वो गिरधारी जानते कि इसके पॉकेट में 10 ही और उसमें से 5 डाला है वो उसको स्वीकार करेंगे, जिसकी पॉकेट में 5 लाख है और उसने केवल 101 डाला तो वो गिरधारी देखेंगे हाँ इसने रखा कितना, भगवान रखा कितना वही देखते, दिया कितना उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते। तो कृपा करके हम लोगों को अपनी परंपरा जो लिगेसी है उसको प्रोटेक्ट करने का, हाँ तब हम ये श्लोक के अनुसार भगवान के पार्षद बनेंगे और भगवान भी हमारे साथ ही अपना सड ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, भगवान अकेले भोगना नहीं चाहते हैं। उस दिन कमल लोचन प्रभु जी लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में बोले ना कि भगवान देखिए कितने दयालु है कि पहले हमारा आश्रम बना के दिया, हाँ तो ये श्लोक पे सिद्धांत पे था एक्चुअली, भगवान भी बना के देते आपको आश्रम में, आइए पहले 80-100 लोग आइए तब आपके साथ आनंद करूंगा, नहीं तो मैं अकेला अकेला इधर क्या करूंगा। अब प्रभुपाद जी उदाहरण क्या दिए, अगर कोई धनी व्यक्ति के पास बहुत धन है और उसका पुत्र नहीं है उसको आनंद ही नहीं मिलता है तो वो बाहर से किसी को दत्तक लेके आता है, अरे भाई तू मेरा पुत्र बन हम आनंद करें साथ में। तो यहां तो दत्तक का तो कोई सवाल ही नहीं, हम तो पहले से ही सब भगवान के बेटे हैं, हमको नहीं पता था लेकिन कृष्ण ने भगवद गीता में आके खुला बता दिया कि मैं ही आपका बाप हूं, चिंता मत करो, अहम बीज प्रद पिता, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन वो पढ़े सुने समझे आचार्यों से अब हमको चिंता नहीं करनी है, पता चल गया ना अभी बाप कौन है अपना, नारायण है, अपने को क्या चिंता करनी है, सब कुछ संभव है केवल परंपरा को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो, नहीं तो फिर रूपक अविराज जैसा कई भविष्य में घटना घटित हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। क्षमा करना अगर किसी को कुछ ऐसा लगा हो कि क्या कठोर कठोर बोलते हैं, खुद का कुछ ठिकाना नहीं है, बात सही है मेरा ठिकाना नहीं है, लेकिन व्यास आसन पे बैठने के बाद ठिकाना हो जाता है मेरा, हाँ क्योंकि व्यास देव जी बुलवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो भी हमको व्यास देव जी की कृपा से लिगेसी प्रोटेक्ट करने का जो भी संदेश मिल रहा है वो बताने का हमारा कर्तव्य है, जिसको हम प्रकट करना चाहते हैं। किसी को उसमें कुछ बुरा लगे तो कृपया क्षमा कीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पण रहेगा तो पूछ सकते हैं, 3 मिनट बची है, 2-3 मिनट वी एंड देन। कुछ किधर करते थे लेक्चर्स में करते, हाँ लेटर लेटर लिख के, अच्छा ओके पत्र लिख के आप, एक मिनट थोड़ा आगे आके बोलेंगे जोर से, क्योंकि मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूं और मेरे सब इंद्रियां कमजोर हो चुकी है। भक्त का संस्था से मन उठ जाए, हाँ क्या वो क्या क्या निजी, जैसे ही मैंने वो घटना सुनी ना मुझे मेरी मेमोरी को मैंने रिफ्रेश किया कि मैंने क्या क्या सुना था क्या क्या समझा था, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया। मैं पहले घर पे जाके फोलियो खोला, कंप्यूटर खोला, फोलियो खोला, एग्जैक्ट कोटेशन निकाला कि कौन से व्यक्ति के साथ कौन सी परिस्थिति में स्थान काल पात्र के अनुसार चर्चा हुई है। कभी कभी क्या होता है एक व्यक्तिगत संदेश प्रभुपाद किसी एक भक्त को बोल रहे हैं, जब प्रभुपाद किसी एक भक्त को व्यक्तिगत संदेश देते हैं ना, तो उसी का उपयोग हम जनरल या जाहिर में सबके लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो दो प्रकार के संदेश हो सकते हैं प्रभुपाद जी के। एक होता है व्यक्तिगत। अगर प्रभुपाद जी मुझे कहें कि नहीं आप मेरे गुरु, प्रभुपाद जी तो अभी नहीं है, मेरे गुरु अगर मुझे कहें कि नहीं आपको केवल अपने तीन बच्चों का, पत्नी का और अपने छोटे से परिवार का ध्यान देना है, इनको पढ़ाना लिखाना है, भक्ति करवाना है, यही आपका सेवा है, तो ये व्यक्तिगत संदेश हो गया। लेकिन जाहिर में फिर सबको ये नहीं कह सकते कि आप सबका सेवा है, अपने बच्चों का और पत्नी का ध्यान रखिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए बड़ा कीजिए, ये जाहिर में नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो व्यक्तिगत आदेश था। लेकिन कुछ आदेश रहते हैं जो जनरल रहते हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जनरल में भी चर्चा हो सकती है। जैसे 16 माला जप करना ही है तो ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल है। चार नियम का पालन करना ही है तो कोई व्यक्तिगत नहीं है, जनरल है। तो वहां पे अगर आप फोलियो पढ़ेंगे तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन व्यक्तिगत नहीं है, केवल अक्षयानंद के लिए नहीं बोला कि तुम मत करो, हाँ जनरल है, एकदम क्लियर कट है। जब क्लियर कट है तो उसमें कोई मतभेद का सवाल नहीं है। फिर भी हो सकता है कि हमारे से गलती हो समझने में, तो हमको परम वैष्णवों से इसका क्लेरिफिकेशन, मार्गदर्शन ले लेना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये बरोबर है। अगर वो लोग भी कहते हैं 2, 4, 10, 15 गुरु साधु शास्त्र तीनों ये कहते हैं तो वो करना चाहिए, वो जनरल है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं जानता हूं वर्षों से इस्कॉन संस्था को ये नहीं, तो फिर आपको भी तो उस दिन लीगेसी प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होकर बोलना चाहिए था ना, अगर जनरल है तो। यहां जाहिर में चल रहा था, कोई कुछ बोला भी नहीं, सब लोग वाह वाह करके चले गए। प्रभुपाद जी का खुला विरोध, प्रभुपाद जी को काटने का काम व्यास आसन पे बैठ के कर रहे, कोई कुछ नहीं बोले, सब चल दिए। आपको करना चाहिए था ना, मैं आया था बोलने के लिए, मुझे 10 जन ने रोक लिया मैं बताने के लिए आया था एक्चुअली कि यहां खुला आप बता रहे हैं, मीन्स यू आर ग्रेटर देन हिम, क्लियर कट इट वॉज। अब खुला इतना जब वो जाहिर में काटने का बात कर रहा है तब कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जब मैं खुला उन्हीं की बात को दोहराऊं तो प्रश्न पूछ रहे हैं। सही बात है, हम जाहिर में इस्कॉन में आज संडे मॉर्निंग प्रोग्राम है इसलिए करते, संडे आफ्टरनून रहता तो मैं इसको नहीं छेड़ता था, क्योंकि यहां पे सब हम लोग इस्कॉन वाले अभी 99% लोग बैठे, कोई एकादा शायद हो सकता है बाहर का होगा। अगर ये जाहिर प्रवचन होता तो शायद मैं ये टॉपिक भी, प्रभुपाद की लीगेसी को प्रोटेक्ट करना ये हमारा कर्तव्य है, मुझे रोकने वाले ने ये कहा कि आपका कुछ असर नहीं पड़ेगा मत बोलिए, तो मैंने तुरंत उन वरिष्ठों का मान लिया और चुपचाप चले भी गया। मैं बोला ठीक है, किसी और अन्य ऊपर के वरिष्ठ को एक बार केवल बता देंगे, आगे क्या करना है उनकी इच्छा, क्योंकि लीगेसी प्रोटेक्ट करने का जितना मेरा रक्षण करने का अधिकार है उससे कई गुना अधिकार उन लोगों का है, मेरा तो एक छोटा सा क्षमता है, उनसे कई गुना अधिकार इन सब लोगों का है। तो अभी इन सब लोगों को, बड़े लोगों को निर्णय लेने दीजिए, मैं मेरा मंतव्य प्रकट कर दूंगा। सो लीगेसी हैज टू बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आप लोग में से 20-25-50 लोग कर सकते हैं चाहे तो, और न चाहे तो जो अगर मेरी दुर्गति होगी तो आपकी भी होगी। आप ये नहीं कहेंगे पद्मनाभ दास भी नहीं प्रोटेक्ट कर रहा था, व्हाट यू डिड पर्सनली आपका कार्य पूछा जाएगा, व्यक्तिगत आपको पूछा जाएगा आपने क्या किया। और कोई वी एंड अप हियर, ये वही बात मैंने बताया ना कि आपने प्रभुपाद के ग्रंथ को अभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ, 12 या 18 किताब है भागवतम, एक एक शब्द पढ़ा ही नहीं है, आपके पास उतना समय भी नहीं है, आप कर भी नहीं रहे, जपमाला में कभी हाथ डालते हो जप करने तो माला अंदर नहीं रहती है, या साफ माला समझ के उसको टिंगाए रखते हो, और फिर उसने ये बताया, उसने ये बताया, इसने ये किया, उसने वो किया, कोई मतलब ही नहीं है इसका एक्चुअली। जिसने एक्चुअली प्रभुपाद के ग्रंथों को और लीलामृत को नहीं पढ़ा ना, उसको तो एक्चुअली अधिकार ही नहीं है इधर उधर का कुछ बात करने का। चुपचाप जो भगवद गीता का श्लोक बोला ना, उस तात्पर्य या उस भागवतम के तात्पर्य पे ही इधर उधर ही इतने में ही चलो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहां से आ गई सब समझने की और करने की, जबकि प्रभुपाद खुला मना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे है। एंड दैट डे तो ही वॉज आउटराइटली बोलते हैं प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा, लेकिन मैंने तो पढ़ा, मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है, हाँ मुझे तो 100% भागवत दिख रहा है, 30% वाल्मीकि रामायण दिख रहा है, इसमें क्या कहां गलत है बताइए। दैट मीन्स आई एम मोर सुपीरियर टू शिला प्रभुपाद, आई नो बेटर देन हिम। यहां तक कि एक वरिष्ठ वैष्णव ने मुझे पर्सनल डिस्कशन में बताया कि शिला प्रभुपाद जी को संस्कृत ठीक से नहीं आता था, अब ये बड़ा संस्कृत स्कॉलर हो गया, हाँ ये सीखा इधर आके भक्ति क्या होती है, संस्कृत क्या होता है, हाँ ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के यहां सीखा है, और उसने बोला शिला प्रभुपाद जी को संस्कृत नहीं आता था। आश्चर्य मुझे होता है कि इतने बड़े बड़े वरिष्ठ इतने सालों के लोगों से ये सुनकर भी मुझे आश्चर्य होता है, दुख नहीं होता है क्योंकि ऐसे बहुत देख लिए इसलिए दुख अभी नहीं होता है, पहले हुआ करता था, हाँ अब बहुत देख लिया तो दुख नहीं होता है इतना, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई वो पुराने जख्म को छेड़ता है ना, जैसे उस दिन वो छेड़ा तो दुख हुआ था, ये दो चार ब्रह्मचारी ने और जन्माष्टमी प्रभु और कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं तो उसी समय सबके सामने ही पूछने वाला था कि ये अधिकार हमें किसने दे दिया कि हम प्रभुपाद जी जिसको गलत कह रहे हैं उसको पढ़ के मैं साबित कर रहा हूं कि ये इससे ज्यादा ये सही है वो गलत है, और ओपनली सी इनडायरेक्ट चलता है, अप्रत्यक्ष रूप में हम उसकी मूर्खता को माफ करें लेकिन ओपनली कैसे मान सकते हैं। चैन गोपी प्रभु यू वर देयर, आप प्रेजेंट थे उस दिन, हालांकि मेरी इनसे चर्चा नहीं हुई थी, मेरे और दो चार ब्रह्मचारियों से हुई थी, उनसे हुई थी, उन्होंने समझाया कि नहीं ठीक है बाद में कभी, तो मैंने बोला ठीक है चलो सॉरी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पे बड़े गंभीर विषय का चर्चा किया जा रहा है, तो प्रभुपाद जी का जो पवित्रता है, इस पवित्रता को बनाए रखने पर प्रभु जी बड़ा जोर दे रहे थे, ये हम सब भक्तों का, ये हम सब का कर्तव्य है, इसमें हम अपने आप का भी रक्षा करेंगे और जो भक्त थोड़ा भी इधर उधर जाएगा उनका भी रक्षा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के इस लैगेसी का अर्थ होता है, व्हाट यू से इन हिंदी लैगेसी को, वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है। जब तक हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ते हैं तब तक हमको इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम चला जाएगा, वक्त चला जाएगा, बहुत कम समय है, समय बहुत कम है, 10 साल 20 साल ऐसे ही बीत जाता है और निकट आ जाता है मृत्यु का समय। तो इसमें प्रभुपाद जी के लिए हम जितना कर सकें करें और यही हमारा श्रेय होगा। तो बड़े अच्छी तरीके से उन्हें हमें सावधान किया है और सब लोग अभी बहुत ही चकित हो गए हैं। तो ये भावना बनाए रखें और अपने आप का भी रक्षा, परंपरा का रक्षा, क्योंकि भावी पीढ़ी जो है आज हमारे ऊपर निर्भर है, अगर हम सही दिशा में जाएंगे भावी पीढ़ी भी सही दिशा में चलेंगे। तो इस सावधान करने के लिए हम पद्मनाभ प्रभु के बड़े आभारी हैं। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा उनका आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। पद्मनाभ प्रभु की जय। कुछ सूचना इस प्रकार से है कि आज 1 बजे जो भक्त लोग जो भक्त लोग डिटेल यानी कि जो मंदिर के जो विग्रह का प्रसाद वगैरह बनाने में सेवा करते हैं उनका एक मीटिंग होगा 1 बजे। कहाँ पे होगा? हॉल में, भक्ति वेदांत स्वामी हॉल में होगा। तो उस हॉल में सबका मीटिंग होगा, तो कृपा करके आइए। और आज जो है प्रसाद का कूपन लेट था, प्रवचन से पहले होना चाहिए था, तो अभी आप सब जाते जाते कूपन लेकर जाइए ताकि प्रसाद में कोई दिक्कत ना हो। और जो भी काउंसिल मेंबर्स है, काउंसिलर्स है, उनके लिए 3 बजे मीटिंग होगा वो रथ यात्रा के विषय पर। ये बातों को ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के इस सुंदर संदेश का मैं ग्रहण किया, तो इसे जीवन भर याद रखें और इस शिक्षा पर चलने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।